कृष्णं च दम्या प्रभु दया Krishna.
वह भी उसी के साथ मंगलमय बन जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु सभी मंगल के स्रोत हैं। अतः जो भी भगवान विष्णु की भक्ति से आकृष्ट होता है, वह मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा कर सकता है। भौतिक जगत के बहिष्कृत व्यक्ति शुद्ध भक्ति को जीवों के सनातन कार्य के रूप में समझने से इनकार कर देते हैं, और वे नहीं मानते कि शुद्ध भक्ति जीव के बद्ध जीवन से वास्तविक मुक्ति है। ऐसे लोग अल्प ज्ञान के कारण सभी प्रकार की भक्ति से वंचित हो जाते हैं। अद्वैत प्रभु के उपदेशों में सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। किंतु भौतिक शक्ति के आकर्षण से मोहित व्यक्ति ये नहीं समझ सके कि अद्वैत प्रभु विष्णु से अभिन्न है। ऐसे लोग अपने निर्विशेष विचारधारा से उनका अनुसरण करना चाहते थे। अद्वैत प्रभु द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का प्रयास भी शुभ है। भगवान विष्णु तथा उनके कार्यकलाप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त सौभाग्य प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान विष्णु का कृपा पात्र बनना और उनके द्वारा दंडित किया जाना एक समान है, क्योंकि विष्णु के सारे कार्यकलाप परम मंगलमय होते हैं। कुछ लोगों के अनुसार अद्वैत प्रभु का दूसरा नाम मंगल था। निमित्त अवतार अर्थात किसी विशेष कार्य के निमित्त भगवान विष्णु के अवतार के रूप में वे आपूर्ति करता या प्रकृति के उपादान हैं, किंतु उन्हें कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके सारे कार्य आध्यात्मिक हैं। जो भी उनके विषय में सुनता है और उनकी महिमा का गान करता है वह स्वयं महिमान्वित होता है, क्योंकि ऐसे कार्य से मनुष्य सारी विपदाओं से मुक्त हो जाता है। विष्णु के स्वरूप को किसी भौतिक कल्मश या मायावाद से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विष्णु के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य पूर्णता की चरम अवस्था प्राप्त कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ऐ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि इस विषय पर मैं कुछ बोल सकूं। हालांकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद बताते हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में श्री अद्वैत आचार्य की महिमाओं में कि अद्वैत आचार्य की महिमा इतनी महान है कि उनको ऐसा प्रयास भी करना है उनको मापने का, ये भी एक अपराध है। तो इस विषय में मैंने कुछ लेक्चर से सुनकर तैयारी की और समाओ लेक्चर से पहले लैपटॉप में क्रैश हो गया। तो देखते हैं इस पर क्या निकलता है। आप सब आशीर्वाद दीजिए। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, जो ये पंच तत्व है इसमें से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं तीन प्रभु हैं। कौन कौन से? गौरांग महाप्रभु, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। पंच तत्वात्मकम कृष्णम, जो श्री भगवान श्री कृष्ण हैं वही भक्त के रूप में अवतरित होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु, भक्ताख्यम जो है श्री अद्वैत प्रभु जो एक भक्त के रूप में आते हैं। तो ये तीनों विष्णु तत्व हैं, भगवान हैं, जो अवतरित होते हैं किस रूप में? भक्त के रूप में। और नमामि भक्त शक्ति का, तो एक अन्य भक्त श्रीवास ठाकुर जो नारद मुनि है वो आते हैं, वो भक्ति हैं। और भक्त शक्ति कम जो गदाधर पंडित हैं, श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में यहां अवतरित होते हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति हैं। तो पंच तत्व परम सत्य के जो पांच फीचर्स है, जिसमें से तीन विष्णु तत्व हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत प्रभु, और श्रीवास ठाकुर कौन है? भक्त है। और भक्त शक्ति कम जो गदाधर पंडित है। तो इसमें चर्चा करेंगे पहला कि जो अद्वैत तत्व है, कौन है अद्वैत आचार्य, फिर उनकी कुछ लीलाओं से और एक साधक के जीवन में उनके जीवन से हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। आदि लीला के अध्याय 6 श्री अद्वैत आचार्य की महिमा में शिला प्रभुपाद एक बयान के काफी बड़े तात्पर्य में श्री बलदेव विद्याभूषण के भाष्य से कोट करते हुए समझाते हैं कि अद्वैत प्रभु कौन है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जिस प्रकार बहिरंगा शक्ति के दो भाग होते हैं, निमित्त तथा उपादान, माया निमित्त कारण है और प्रधान उपादान कारण है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी निमित्त तथा उपादान कारणों के आधार पर भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए दो स्वरूप धारण करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अद्वैत प्रभु किनके अवतार हैं? महाविष्णु के। और चैतन्य भागवत में श्रीला वृंदावन दास ठाकुर वो लिखते हैं, वो किनके अवतार हैं? शंकर जी के। तो दोनों प्रमाणिक आचार्य हैं, तो किनका किनका वर्जन देना चाहिए? तो यहां पर बताते हैं, जैसे कुछ सिद्धांत होते हैं जो नास्तिकवाद होते हैं, जो कहते हैं कि सब स्रोतों के कारण जो है वो पदार्थ ही है, भगवान नहीं है, और इस प्रकार के वो अलग अलग मत या दर्शन प्रस्तुत करते हैं। और बौद्ध विद्याभूषण इसको इस प्रकार से समझाते हैं, जैसे कि एक माता होती है, माता अपने गर्भ में बच्चे को पालती है, एक जगह प्रोवाइड करती है और उसको जन्म देती है। उसके साथ साथ एक वो दूसरा कार्य करती है कि अपने शरीर से जिसके उसके अलग अलग वस्तुएं हैं, इंग्रीडियंट्स हैं, उससे वो उस शिशु के शरीर को बनाती है। तो एक माता के दो कार्य हैं, एक तो पदार्थों को देना और दूसरा एक ऐसा जगह देना, उनका लालन पोषण करना और उनको जन्म देना। तो वो बताते हैं क्या माता निश्चित रूप से एक निमित्त कारण है और एक प्रधान कारण है। निमित्त मतलब जो इंग्लिश में वर्ड है, निमित्त मतलब एफिशिएंट कॉज एंड मटेरियल कॉज। एफिशिएंट कॉज मतलब उनको जगह देना, अपने गर्भ के अंदर स्थान देना, उसको जन्म देना, और मटेरियल कॉज यानी तो मटेरियल प्रोवाइड करना, जितने भी अलग अलग पदार्थ हैं उसके लिए। परंतु क्या हम माता को पूर्ण स्त्रोत मान सकते हैं उस शिशु का? नहीं। पूर्ण स्त्रोत कौन है? जैसे हर माता के पीछे एक पिता है, तो उसी प्रकार से जो ये सृष्टि होती है, तो सृष्टि के पीछे एक पुरुष है जो उनको महाविष्णु कहते हैं। जो भौतिक शक्ति है वो भी दो कार्य करती है, जैसा कि यहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, निमित्त तथा उपादान। वो अलग अलग प्रकार के पदार्थ देती है और जीवों को जन्म देती है, उनको शरीर प्रदान करती है। परंतु जिस प्रकार माता के पीछे उसके पिता है, एक पुरुष है, उसी प्रकार जो माया शक्ति है उसके पीछे जो आदि स्रोत है वो कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु। और इन दोनों कार्यों के अगेंस्ट उनका भी एक फीचर है, जैसे कि यहां एक निमित्त तथा उपादान, तो उसी प्रकार से जब निमित्त कार्य यानी जब भगवान विष्णु दृष्टिपात करते हैं, जिससे पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है और वो जीव उस सृष्टि में प्रवेश करते हैं, तो जो वो फीचर है वो महाविष्णु द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो दूसरा फीचर है जिसपे वो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो होता है सदाशिव भगवान शंकर, जो दुर्गा के पति के रूप में जाने जाते हैं। तो जो ये जो सदाशिव शंकर, जब उनके जो अवतार हैं वो अद्वैत प्रभु माने जाते हैं। हालांकि बड़ा टेक्निकल और फिलोसफिकल है, परंतु ये तक समझना एटलीस्ट रिकॉर्ड बेसिस के लिए और उनको जानना जरूरी है कि उनकी क्या स्थिति है। आज हम उन व्यक्ति का आविर्भाव दिवस है जिनसे ये पूरी सृष्टि आती है, और जो आगे चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करने के एक कारण भी बने। और ऐसा एक उनके एक शिष्य ने ग्रंथ लिखा है अद्वैत प्रकाश, उसमें वर्णन आता है कि किस प्रकार कलयुग की शुरुआत में भगवान शिव ध्यान लगा रहे थे। वैष्णवों का गुण है पर दुखा दुखी, तो उनके हृदय में बहुत करुणा उत्पन्न हुई और वो ध्यान लगा रहे थे कि कलयुग में जो जीव होंगे उनका उद्धार किस प्रकार होगा। देवताओं के 700 वर्ष तक उन्होंने ध्यान लगाया और उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। तो जैसे ही शंकर जी ने आंखें खोली और उनको प्रणाम किया, भगवान विष्णु ने उनको उठाया और आलिंगन किया। तो जब भगवान विष्णु ने शंकर जी को आलिंगन किया तो एक अभूतपूर्व विग्रह उपस्थित हुआ। इनको कहते हैं अद्वैत प्रभु, अद्वैत यानी इससे पहले कभी नहीं हुआ था। एक इसका अर्थ ये भी है, और अद्वैत इसका अर्थ ये भी है कि जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। तो जब उन्होंने का आलिंगन किया तो भगवान कृष्ण ने भविष्यवाणी की कि आप जाइए इस पृथ्वी पर नवग्राम में स्थान पर कुबेर ब्राह्मण के यहां पर आप जन्म लीजिए और मैं आऊंगा गौरांग महाप्रभु के रूप में। जिस उद्देश्य से आप तपस्या कर रहे थे कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो इस यहाँ का जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन उसका प्रचार करने के लिए मैं प्रकट होऊंगा, परंतु मेरे प्राकट्य से पहले आप जाकर एक वो ग्राउंड प्रिपेयर कीजिए, सारी तैयारी कीजिए। तो हम देखते हैं वो फिर आए, उनका जन्म हुआ नवग्राम में, सिलाहटी जो भी बांग्लादेश में है वहां पर उनका नवग्राम में उनका जन्म हुआ। कुबेर कुबेर पंडित और नाभा देवी उनकी माता का नाम था। ये कुबेर पंडित गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार ये कुबेर देवता ही है, क्योंकि शंकर जी और कुबेर में बहुत ही आत्मीयता का संबंध है, तो कुबेर जो देवता है वो कुबेर ब्राह्मण के रूप में यहाँ पर आते हैं और उनके पुत्र के रूप में अद्वैत प्रभु यहाँ पर प्रकट होते हैं। और भक्ति रत्नाकर में इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन है कि किस प्रकार से उनका प्राकट्य हुआ। जब इनके पिता लगभग 60 या 70 वर्ष की आयु में थे तब अद्वैत प्रभु उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए और कैसे पूरे के पूरे ग्राम में उत्सव मनाया गया, हरिनाम संकीर्तन निकाला गया, किस और देवताओं ने वहां पर पुष्प वर्षा की। हालांकि जन साधारण उसको देख नहीं पाए परंतु सारे देवता वहां पर प्रकट हुए और उनके घर पर उन्होंने पुष्प वर्षा की अद्वैत प्रभु के आविर्भाव को मनाने के लिए। और अद्वैत प्रभु के जो पहला शब्द उनकी जीवा पर निकला वो क्या था, श्री कृष्ण चैतन्य। जैसे बताते हैं हरिदास ठाकुर के जीवा पर जो पहला शब्द निकला था वो था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिदास ठाकुर के जीवा पर जब पहला शब्द निकला तो सारे उनके परिवार वाले परेशान हो गए थे क्योंकि उनका मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, परंतु भगवान का प्रचार नाम का प्रचार करने के लिए आए थे। तो उसी प्रकार से अद्वैत प्रभु का जब जन्म हुआ तो पहले शब्द उनके निकले श्री कृष्ण चैतन्य। और ये बचपन से ही इतने प्रखांड पंडित थे, क्यों ना वो भगवान महाविष्णु है। तो बताते हैं 3 साल के अंदर उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा कंप्लीट कर ली थी, सारा संस्कृत व्याकरण अलंकार षट दर्शन जितने भी प्रकार की शिक्षा उन्होंने पूरे प्रखार पंडित के रूप में वो माने गए थे। और जो उनके राजा थे उनके जो पिता थे वो उनका राजा से अच्छा संपर्क था, तो जहां जिस शिक्षक जो राजकुमार को पढ़ाता था उन्हीं के साथ इनकी शिक्षा हुई, उन्हीं के साथ इनका पूरा एजुकेशन हुआ। और जब ये जाते थे अपने विद्यालय तो रास्ते में एक दुर्गा देवी का मंदिर होता था, तो राजा का पुत्र हमेशा उनको प्रणाम करता था दुर्गा देवी को, और देखता था कि ये जो इनका जो बचपन का नाम था कमलाक्ष, इनकी जो आंखें थी बिल्कुल कमल नयन के समान थी, तो इसलिए इनके माता पिता इनका नाम कमलाक्ष भी रखा। और जैसे तात्पर्य में एक नाम था इनका मंगल, कि कहीं भी जाते थे पूरा सब वातावरण मंगलकारी हो जाता था, तो कमलाक्ष उनको प्रणाम नहीं करता था दुर्गा देवी के विग्रह को। तो ये देख के उन राजकुमार को बड़ा अंदर से गुस्सा आता था। तो एक बार जब जा रहे थे तो दोबारा वो मंदिर आया और राजकुमार ने प्रणाम किया और वो गुस्से से उनको बोलने ही वाला था कि तुम कितने घमंडी कैसे हो कि इसको प्रणाम नहीं करते, और जैसे ही वो उनको बिल्कुल डांट लगाने वाला था वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा और देखा उसके शरीर से चेतना चली गई। और जब राजा का बेटा इस प्रकार से हुआ तो पूरा का पूरा सारे लोग इकट्ठा हो गए और सारे राजा और सब आए कि किस प्रकार से हुआ, तो सारे लोग बहुत जोर जोर से रोने लग गए विलाप करने लग गए, परंतु कमलाक्ष बहुत ही मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे मैं इसको वापस चेतना में ला सकता हूँ। तो कहा मेरे पिता के घर से चरणामृत लाइए, तो जब चरणामृत लाए उन्होंने उनके चरणामृत मुंह में डाला कुछ शरीर पर छिड़का और तुरंत खड़ा हो गया और जोर जोर से बोलने लग गया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम विष्णुपादकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जब ये देखा लोगों ने सारे हैरान हो गए ये कैसे हो गया, तो सारे लोग बहुत ही प्रभावित हुए। फिर आगे चलकर दीपावली के उत्सव पर वहां पर उस विग्रह की पूजा होती थी, आज भी जाएंगे बंगाल में दिवाली के उत्सव में काली पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, तो राज पूरा वो राजा स्वयं उसको विग्रह को पूजा करने आता था और देखता था सारे लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं, परंतु देखा कि ये कमलाक्ष प्रणाम नहीं कर रहा। फिर से उन्होंने देखा ये झुकता नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये दुर्गा माता जगत माता है, इनको तुम प्रणाम क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण है, जिस प्रकार पेड़ की जड़ पर पानी डालने से सभी पत्ते पत्तियां को पोषण हो जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की आराधना करने से, भगवान कृष्ण को नमस्कार करने से सभी देवी देवताएं संतुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने भागवतम का श्लोक उद्धृत किया, यथा करो मूल निश्चित से नैना। तो राजा ने जब यह सुना, उन्हें उनके पिता को देखा कि ये कितना घमंडी आपका पुत्र है, तो उनके पिता ने कहा कि कृपया तुम प्रणाम कर दो। तो क्या करते, बार बार जो उनके पिता थे गुरु के समान थे, उनके कहने पर जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया तुरंत धड़ाम करके पूरा विग्रह फट गया और बिल्कुल चूर चूर उसके सारे टुकड़े गिरे और सबने देखा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो क्यों, वो साक्षात भगवान की शक्ति है, तो शक्ति अपने जो शक्तिमान है उनसे कैसे वो प्रणाम स्वीकार करते हैं। तो तुरंत का विस्फोट हो गया और जब ऐसे पूरा हाहाकार मच गया तब देखा कि कमलाक्ष अंतर्धान हो गए, अप्रकट हो गए। तो उनके माता पिता बहुत ही दुखी हुए कि कहाँ चले गए, और जब वो वापस गए बहुत ही दुखी होकर, कमलाक्ष कहाँ चले, अप्रकट हो गए वहां से। तो जिन विग्रहों की वो पूजा करते थे वो उनके स्वप्ने में आए, उन्होंने कहा कि आपका जो बेटा है आप घबराइए मत कि शांतिपुर में है। उन्होंने कहा कि आपका बेटा नहीं है, पूरे संसार का पालक करता है और बहुत ही जल्द तुम उनसे मिलोगे। तो जैसे ही उनका स्वप्न हुआ उनके माता पिता निकले शांतिपुर की ओर, और देखा शांतिपुर में जो अद्वैत आचार्य हैं वहां पर सारे संस्कृत शास्त्रों को पढ़ रहे थे, तो वहां पे गए उनसे मिले। और उसके बाद उनके अद्वैत ने कहा कि मेरा ये स्टडी हो गया, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, जैसे PhD करते हैं ना, तो जो माधवेंद्रपुरी का ग्राम है, माधवेंद्रपुरी का ग्राम है, वहां पर एक वेदांत वाचस ऐसे कुछ करके नाम है उनके टीचर का, मैं उनसे पढ़ने जाता हूँ। तो उनको वहां पे गए, उनसे पढ़ने गए, और वहां पे भी जाके जितनी शिक्षाएं थी ज्योतिष शास्त्र संस्कृत का अलग अलंकार सब उन्होंने बहुत ही जल्दी पूरा कर लिया। उनके ये देखकर बहुत उनकी बहुत भरी पूरी प्रशंसा करते थे। तो एक बार वो जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक तालाब है, तालाब में अलग अलग बहुत ही सुंदर कमल के पुष्प निकले हुए हैं और पूरा तालाब कमल के पुष्पों से भरा हुआ है, परंतु उन्होंने कहा कि ये कमल के पुष्प की जो नाल होती है उसपे बहुत सारे सर्प होते थे, और पहले भी होता था कोई भी वो पुष्प लेने जाता था उसको सांप निश्चित रूप से काट लेते थे। तो उनके जो गुरु हैं उन्होंने कहा कि देखो ये कमल के फूल इतने सुंदर हैं, ये हरि को चढ़ाने लायक है। तो उन्होंने कहा आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको लाऊं। उनका नहीं 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 नहीं, यहाँ पर इतना खतरा है, यहाँ पर इतने सांप है, जैसे कोई जाएगा उनको काट लेता है। तो उनका कहा निश्चित आप घबराइए मत। तो उनको प्रणाम करके गए और पानी के ऊपर जो उनकी पत्ती थी पत्ती पर चलते चलते तालाब के मध्य में पहुंच गए और वहां से फूल निकाल कर वापस लाए। उसके गुरु ने देखा वो बहुत ही हैरान है कि तुमने विद्या कहाँ से सीखी। तो उन्होंने कहा कि ये सब आपकी और भगवान कृष्ण की कृपा के कारण है, जो भी भगवान कृष्ण की भक्ति में लगता है उसको ये अष्ट प्रकार की सिद्धियां तो वैसे ही प्राप्त हो जाती हैं। तो उनके गुरु ये बात सुन के बहुत प्रसन्न हुए और जब उनकी विद्या पूरी हुई उन्होंने कहा कि उनको वापिस शांतिपुर जाना है। तो उन्होंने कहा कि अब इतने भाव विभोर हो गए उनके विराम में, उन्होंने कहा कि तुम्हारे दर्शन मुझे दोबारा कैसे प्राप्त होंगे। तो उन्होंने कहा आप घबराइए मत, आप जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं वापस वहां पर आऊंगा। तो वापस शांतिपुर आए तो वहां पे एक दिग्विजय पंडित भी था जो आया पूरे भारत में, उनको भगवान शिव की ही आराधना करता था, एक पर्टिकुलर डीटी है काशी विश्वनाथ की आराधना करता था, और उनसे उनको वरदान प्राप्त था कि तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। पूरे भारत वर्ष में वो भ्रमण करके आया था और उस समय जो शांतिपुर मायापुरी पूरा हब था, सारे जितने भी नॉलेज है इंडिया की यहीं से सर्कुलेट होती थी, सारे महान महान पंडित यहीं पर होते थे। तो अद्वैत आचार्य ने बहुत ही साधारण युक्ति से उसको पराजित कर गया और वो बड़ा परेशान हो गया कि मेरे को वरदान प्राप्त था तो स्वप्न में इनके फिर काशीश्वर विश्वनाथ आए और उन्होंने कहा कि उनकी असली आइडेंटिटी बताइए, द्वैताचार्य कौन है। तो अगले दिन गए और उनके शिष्य बने। उस समय ये प्रथा थी, जो जिससे पराजित हो जाता था उनका शिष्य बनता था। तो ऐसे करके इनके बचपन के अनेक लीलाएं हैं जो उनके फिर माता पिता का तिरुभाव हुआ। तो ये भ्रमण पर निकले, तीर्थ यात्रा भ्रमण पर निकले अद्वैताचार्य। और भ्रमण करते करते पहुंचे वृंदावन, और वृंदावन में जाकर इनको दोबारा एक स्वप्न आया, जो द्वादश आदित्य टीला है वहां, उसके आगे जाके देखेंगे अद्वैत वट भी है वहां, जो बनियान ट्री बरगद का वृक्ष के नीचे वहां रहते थे। तो उन्हें स्वप्न में राधा मदन मोहन प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर इस जमीन के नीचे हूं, मेरे को कृपया निकालो, स्थापित करो और मेरी आराधना करो। तो गए उन्होंने, मदन मोहन विग्रह, ये वही विग्रह है जो कुब्जा द्वारा सेवित विग्रह है। तो उनको निकाला, स्थापित किया और उनकी आराधना की। और जैसे उन्होंने उनकी आराधना करना शुरू की, हजारों हजारों वहां ब्रजवासी वहां पर उमड़ पड़े। प्रतिदिन एक उत्सव होता था, हजारों हजारों लोग दर्शन के लिए आते थे आराधना करने के लिए। तो ये देखकर जो हम मुस्लिम गवर्नमेंट थी दिल्ली की, उस समय दिल्ली में राज जो कर रहे थे, वो बड़े असुरक्षित महसूस करने लगे कि सारे हिंदू की देखो ये सब एकजुट होकर कहाँ जा रहे हैं, कोई नया विग्रह मिला है। तो उन्होंने अलग अलग सैनिक भेजे कि जाओ उसको तोड़ के लाओ। तो जैसे ही सैनिक वहां पर पहुंचे तो देखा वो विग्रह अप्रकट हो गए और उन्होंने कहीं भी ढूंढा उनको कहीं मिला ही नहीं, सिंहासन पर भी नहीं है। और जब पुजारी और अद्वैत आचार्य को ये पता चला तो अद्वैत आचार्य बिल्कुल ध्यान में बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु आप कहाँ चले गए, आप अभी प्रकट हुए थे, हम आपकी सेवा कर रहे थे, आप कहाँ चले गए। तो मदन मोहन उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में आए और उन्होंने कहा कि तुम घबराओ मत, क्योंकि ये सारे लोग मंदिर तोड़ने और मेरे को अलग करने आए थे, इसलिए मैं बहुत छोटा सा बनकर कमल के पुष्प के पीछे छुप गया था। तो इसलिए आप देखें उनका नाम है, अभी आप तुम आके खोलो और जाओ, मैं वहीं पर अभी आपको मिलूंगा। वो गए और देखा वही विग्रह वहां पर थे, इसलिए उनका नाम एक पड़ा मदन गोपाल। तो कहता छोटो सा मेरा मदन गोपाल, तो इसके पीछे ये है। और बाद में दोबारा स्वप्न में और कहा कि तुम जाओ नवद्वीप जाओ, तुम भूल गए हो तुम आने का क्या उद्देश्य था कि मैं प्रकट होने वाला हूं गौरांग महाप्रभु के रूप में, तुम वहां जाकर ग्राउंड प्रिपेयर करो। और ये बिल्कुल अटैच हो गए थे वृंदावन से, तब ये युवक अवस्था में थे, परंतु स्वप्न आया क्या नहीं जाना। बस ब्रिटिश ने कहा कि मेरे को पुरुषोत्तम चौबे मथुरा में है, इसको इनको तुम ये विग्रह दे दो। ये बाद में सनातन गोस्वामी जी को ये विग्रह वहां से प्राप्त हुए। और वहां पर चित्रवटी एक स्थान है जहां पर ललिता देवी ने राधा रानी को भगवान कृष्ण का एक चित्र बना के दिया था, जिसको देखकर राधा रानी मूर्छित हो गई थी और पूर्ण उन्होंने शरणागत किया था। तो वो चित्र तुम प्राप्त करके उसकी तुम आराधना करना और वो चित्र लेके तुम वापस जाओ नवद्वीप में। तो तब वो वहां नवद्वीप गए और नवद्वीप जाने के बाद जब उन्होंने वहां की स्थिति देखी, जैसा कि एक भक्त का स्वभाव होता है दूसरों का कष्ट में देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है, तो वहां पर बहुत ही बुरी स्थिति थी। चाहे कोई ब्राह्मण वर्ग का हो, चाहे कोई भी वर्ग का हो, किसी के मुख पर भगवान कृष्ण गोविंद का कोई नाम नहीं, और लोग अलग अलग प्रकार की पूजाओं करने में लगे हुए थे। कोई सर्प देवता की पूजा करता था और कोई शक्ति के उपासक थे, और अलग अलग शराब और मांसाहार इस प्रकार के पदार्थ के वो उनको चढ़ाते थे। और अद्वैताचार्य और वहां पर उन्होंने हरिदास ठाकुर मिले, श्रीवास ठाकुर, जो कुछ वैष्णव जन थे, श्रीवास आंगन में मिलकर ये कथा करते थे, भगवद गीता भागवतम पर कीर्तन करते थे। तो वहां पे जितने लोग थे उन वो कहते थे कि ये तुम इनने कौन सी नई विधि निकाली है, और उनको अलग अलग प्रकार की धमकी देते थे कि देखो कि तुम जिस प्रकार से पूजा कर रहे हो, यहाँ का जो मुस्लिम जो गवर्नर है वो अपने सैनिक भेजेगा और हम सबको मार डालेगा, तो इससे अच्छा हम ही क्यों ना इन सभी वैष्णवों को मार दें या इसका जो घर है गंगा में फेंक दें। तो एक तरफ वैष्णव के हृदय में उनके प्रति करुणा भाव था और उनके हित के लिए वो इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, परंतु दूसरी तरफ लोग उनके बारे में क्या सोच रहे थे कि ये हमारे विनाश का कारण बनेंगे। तो जब अद्वैताचार्य ने ऐसी स्थिति देखी तो उन्होंने एक व्रत लिया उन्होंने कहा कि इनका उद्धार तो मैं खुद नहीं कर सकता, स्वयं भगवान कृष्ण अवतारी कृष्ण को यहाँ पर प्रकट होना पड़ेगा, तभी इन लोगों का उद्धार होगा। और गौतमिया तंत्र में एक श्लोक है जिसको उन्होंने पढ़, उनको उनको एक श्लोक मिला, तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलके न वा विकृणिते स्वामात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, कि वे भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों के प्रति बहुत ही करुणामय हैं, ऐसे भक्त के हाथों बिक जाते हैं जो एक तुलसी दल और एक हाथ में पाम फुल ऑफ वाटर उनको ऑफर करता है। तो जब उनको ये श्लोक मिला तब उन्होंने शालिग्राम शिला की पूजा करना प्रारंभ किया, क्योंकि कलयुग में शालिग्राम शिला जैसे अर्थविग्रह को तो स्थापित करना पड़ता है, परंतु शालिग्राम शिला तो स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और उनकी तुलसी दल मंजरी लेकर और गंगा जल से उनकी आराधना करनी उन्होंने प्रारंभ की। और बताते थे कैसे वो भावावेश प्रेम में आके प्रेम हुंकार लगाते थे, भगवान कृष्ण को पुकारते थे, नेत्रों से उनके मूसलाधार वर्षा बहती थी, बिल्कुल दिव्य प्रेम में उन्मत्त वो उनकी पूजा करते थे और हरिनाम संकीर्तन किया करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि किस प्रकार से वो यहाँ पर प्रकट हो इन जीवों पर उद्धार करने के लिए। इसके बीच में जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता, इनकी 8 कन्याएं हुई थी, सबका 8 जब उनका जन्म के उपरांत ही उनका तिरुभाव हो गया था, और जगन्नाथ मिश्र और अद्वैत आचार्य मित्र थे आपस में, और जब अद्वैत आचार्य ने जगन्नाथ मिश्र को कहा कि तुम विष्णु की उपासना करो, शालिग्राम शिला की पूजा करो, तो निश्चित, और जब उन्होंने पूजा की तो उनको 2 पुत्र प्राप्त हुए, विश्वांबर और विश्वरूप और विश्वांबर। तो जब निमाई पंडित ने जब शुरू में जब वो बाल्य लीला में उन्होंने अपना जो पूर्ण पुरुषोत्तम वो भगवान है इसको प्रकट नहीं किया, तो जो अद्वैत आचार्य उनके 2 घर थे, एक शांतिपुर में और एक मायापुर में, तो अप डाउन करते रहते थे। तो जब नवदीप में वो कृष्ण भावनामृत पे कृष्ण कथा किया करते थे, तो जगन्नाथ मिश्र के पुत्र विश्वरूप उनकी वो कथा में अटेंड करते थे, और जो माता सच्ची हैं जब निमाई ये 3-4 वर्ष के होंगे उनके हाथों प्रसाद भिजवाती थी विश्वरूप के लिए, तो जब कथा चल रही होती थी तो निमाई आते थे वो प्रसाद लेके विश्वरूप के लिए, और सारे वैष्णव गण उनके सौंदर्य को देख के इतने आकर्षित हो जाते थे, वो विश्वरूप को प्रसाद देते थे और वापस जाते थे, जाते जाते हल्का साइड ग्लांस से वो अद्वैत आचार्य को देखते थे, तो जब अद्वैत आचार्य उनके सौंदर्य को देखते थे वो इतना मुग्ध हो जाते थे, कौन है बालक कि मैं किसी साधारण बालक से मैं कैसे इतना आकर्षित हो रहा हूं। तो इस प्रकार से समय बीतता गया, और एक बार की बात है जब वो अपने शालिग्राम शिला की पूजा कर रहे थे और सारा पूजा करने तैयार थे, उससे पहले वो ध्यान में बैठते थे, परंतु आज के दिन बहुत विशेष बात हुई, जब उन्होंने ध्यान लगाया उनके ध्यान में कृष्ण आ ही नहीं रहे थे, कौन आ रहे थे? निमाई पंड। हमेशा जब भी ध्यान लगाने बैठते सिर्फ निमाई का रूप उनका ध्यान आता, कृष्ण के अलग अलग रूप में भी वो ध्यान लगाने का प्रयास करते परंतु निमाई का रूप ही उनके उसमें आता, और वो बड़े परेशान हो गए कि कैसे मैं इस बालक से इतना आकर्षित हो रहा। और उस समय निमाई गदाधर पंडित के साथ, क्योंकि सच्ची माता ने गदाधर पंडित को कहा था हमेशा तुम निमाई के साथ रहना, तो गदाधर पंडित के साथ लेके वो पीछे खड़े हुए थे, और जब अद्वैत आचार्य ने मुड़ के देखा और देखा कि सामने निमाई पंडित खड़े हैं, तो वो समझ गए कि ये यही मेरे यही तो है जिनकी मैं आराधना कर रहा था, इतने दिनों से मेरे से लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। और उन्होंने जितना भी जो वर्शिप का पैराफेनेलिया था उसको घुमाया और सबसे पहले गंगा जल से उनके चरणों का अभिषेक किया, उनको भोग लगाया और आरती की, और ये देखकर गदाधर पंडित बिल्कुल कहते कि ये बुड्ढा पागल हो गया है, क्या कर रहा है, तुम्हें पता नहीं है इसकी क्या गति होगी, तुम्हें ये तुम क्या कर रहे हो ये सब। तो उन्होंने कहा कि गदाधर अभी कुछ ही समय में तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बालक कौन है। और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, शालिग्राम शिला ट्रंक में डाल के बंद कर दी और चले गए शांतिपुर। वहां जाके उनका भाव था कि अगर ये मेरे प्रभु असली में मेरे प्रभु हैं तो मेरे को वापस बुलाएंगे। तो पैक करके सब चले गए शांतिपुर में, और इस समक्ष महाप्रभु ने शिवा सांगन में अपनी संकीर्तन लीला प्रारंभ की। उनके जितने भी भक्तगण हैं, नित्यानंद प्रभु भी आ गए थे, और अनेक भक्त मिलकर शिवा सांगन में बहुत ही भावावेश में आके कीर्तन करते थे। और इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन है कि उस कीर्तन में होता क्या था। कोई दहाड़ रहा होता था, कोई जमीन पे लोटपोट हो रहा होता था, किसी के आंखों से आंसू बह रहे होते थे, और सारे बिल्कुल उन्मुक्त। और महाप्रभु अक्सर इन कीर्तन में चिल्लाते थे, नाड़ा नाड़ा नाड़ा, नाड़ा मतलब नारायण। तो भक्तों को समझ नहीं आता था कि महाप्रभु, ये गौरांग महाप्रभु नाड़ा नाड़ा कौन है नाड़ा। तो कह रहे वही नाड़ा जिसकी वजह से जिसने मेरे को यहां पर बुलाया है, देखो जाके शांतिपुर में बैठा है और उसको जाके लेके आओ। रमाई पंडित को उन्होंने भेजा, जो शिवा पंडित के भाई थे, कि नाड़ा बुड्ढा को यहां पर लेके आओ। और रमाई पंडित गए वहां पर, और जैसे ही वहां पर गए, अद्वैत आचार्य को पता था कि महाप्रभु ने इनको भेजा है, और बहुत ही प्रसन्न हुए कि हाँ अब वो समय आ गया है कि जो मेरे भगवान है मेरे को आप बुला रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत सीता माता से कहा, जो उनकी पत्नी थी, कि तुरंत सारा सामान पैक करो। और उन्होंने बहुत सारा, जितना वर्षिप का सामान था, जितना भी उनका सामान था, सब उन्होंने पैक किया, अलग अलग प्रकार की भेंटे ली और चल पड़े नवद्वीप की ओर। परंतु जैसे ही नवद्वीप में पहुंचे, उन्होंने रमाई पंडित और सीता माता को भेजा कि तुम आगे जाके कहो, वो टेस्ट करना चाहते थे, कहते उनके महाप्रभु को जाके कहो कि मैं नहीं आया। और ये जाके छुप गए नंदन आचार्य के घर में। तो जैसे रमाई पंडित वहां पर जाके पहुंचे, तो महाप्रभु ने उनके बोलने से पहले बोल दिया, हाँ हाँ आ गए, उसने सिखा के भेज दिया तुम्हें कि जाके कहना कि मैं आया नहीं, है ना, लेके आओ, जल्दी लेके आओ नाड़ा बूढ़ा को। तो वो गए भागते हुए और उनको कहा कि महाप्रभु ने तो पहले ही बता दिया कि चलो सारे साथ चलो। तो फिर भी जा रहे थे, फिर भी उनके मन में था कि अगर ये वास्तव में मेरे प्रभु हैं तो निश्चित रूप से जिस रूप पर मैं ध्यान लगाता हूं उसको वो प्रकट करेंगे। और जब वो गए तो देखा कीर्तन हो रहा था, और महाप्रभु ने उनके आने से पहले ही नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित को कहा कि ये ऐसे इसकी ऐसी इच्छा है, ये ऐसा चाहता है। तो जब वो आए, गौरांग महाप्रभु वहां पर विराजमान थे, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के दक्षिण, दक्षिण है निताई चांद बामे गदाधर, दक्षिण में नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर छाता करके बैठे हुए थे, और बाएं तरफ गदाधर पंडित और कई लोग कुछ उनके पैर दबा रहे थे। और जब ये रूप देखा तो उनको वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, और तुरंत ऐसे रूप को देखकर वो मूर्छित हो गए। तो गौरांग महाप्रभु ने उनको उठाया, उनका और संकीर्तन प्रारंभ हुआ, और महाप्रभु ने कहा कि तुम नित्य करो। तो वो संकीर्तन में सारे नित्य लीड करते थे अद्वैत प्रभु, हालांकि सबसे देखने जाए तो एल्डरली वैष्णव थे, सभी समुदाय के मतलब लीडर थे, और बहुत भाव विभोर होकर नित्य करते थे। तो उस समय महाप्रभु ने अपने चरण कमल उनके सिर पर भी रखे। तो यही एक इंस्टेंस है जब महाप्रभु ने उनके अपने चरण कमल उनके सिर पर रखे। वैसे महाप्रभु उनको हमेशा अपने सीनियर की तरह डील करते थे, और करना भी क्यों, उनके जो गुरु थे वो थे माधवेंद्रपुरी। अलग पूरा सा डिस्क्रिप्शन है कैसे वो माधवेंद्रपुरी से मिले, और आयु में इतने बड़े थे, और जो महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वरपुरी, उनके गुरु भाई भी थे अद्वैत आचार्य। तो हमेशा महाप्रभु इनको प्रणाम करते थे और हमेशा इनके पैर छूने का प्रयास करते थे। तो वो वैसे तो बहुत सुखी थे, परंतु अंदर से उनको इस बात की बहुत ही उनको चुभता था कि क्यों महाप्रभु मेरे को इतना सम्मान दे रहे हैं। और अक्सर इस बात का बड़ा उनको अंदर कुंठा रहते थे कि महाप्रभु मेरे को अपने सेवक के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे। तो उन्होंने कोई एक युक्ति निकाली कि मैं क्या करूंगा। तो अगर ठीक है, अब देखता हूं मैं भी कैसे मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे। तो वापस सब पैक करके दोबारा चले गए शांतिपुर, और शांतिपुर जाके अपने विद्यालय में योग वशिष्ठ, जो मायावाद सिद्धांत से भरा हुआ है, उसको सिखाना शुरू हो गए। हरिदास ठाकुर ने देखा है कि वो हंसने लग गए, ये क्या लीला चल रहा है, सभी लोग हैरान, पूरे जीवन इन्होंने वैष्णव दर्शन का प्रस्तुत किया और अभी अचानक से योग वशिष्ठ बोलना शुरू हो गए। और बोलना शुरू हो गए कि हम तो एक हैं, हम सब परमात्मा है, हमारा जीवन का उद्देश्य है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, और जीवन का असली उद्देश्य है परम ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान भक्ति से सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सूचना मिली महाप्रभु को नवदीप में, और जैसे ही महाप्रभु को ये सूचना मिली, नित्यानंद प्रभु को लेकर 40 किलोमीटर लगभग दूर है, भागते हुए महाप्रभु नवदीप से गए वहां शांतिपुर। और देखा जब अद्वैताचार्य ने पीछे से आ रहे महाप्रभु, और वहां पे उनकी पत्नी थी सीता माता, उन्होंने प्रणाम किया, हरिदास ठाकुर ने प्रणाम किया, अन्य भक्तों ने प्रणाम किया, और वो और जोर जोर से बोले लगे, कौन किसको प्रणाम कर रहा है, हम सब ब्रह्म है, कौन किसको प्रणाम कर रहा है। और महाप्रभु इतने गुस्से में आए, उनकी दाढ़ी को उन्होंने लिया और जोर से नीचे पटका और दो तीन लाते मारे, और सीता माता ने क्या 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 कर रहे हो, इतना बूढ़ा है, मर जाएगा, और सारे बिल्कुल घबराए। महाप्रभु उनको लाते मार रहे हैं, और अद्वैत आचार्य पूर्ण एक्सटेसी में कि हाँ मेरा जीवन का उद्देश्य सफल हो गया, मेरी युक्ति सफल हुई, अब महाप्रभु ने मेरे को सेवक के रूप में स्वीकार किया है। और ये देख के महाप्रभु एक्सटर्नली बड़े एम्बेरेस हो गए कि ये महाप्रभु को देखा कि मेरे को ट्रिक कर लिया है। तभी कहते हैं कुछ भक्तगण भगवान से ज्यादा एक कदम आगे होते हैं, और परंतु हृदय में महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे। और एक आचार्य लिखते हैं कि जो कृपा है हमेशा ऐसा नहीं है प्रशंसा के रूप में आती है, कृपा अलग अलग रूप में भी आ सकती है, परंतु जो भक्त है दोनों प्रकार की कृपा प्राप्त करके हर्षित होता है। और इसके बीच में मैं एक विवाह लीला कहना भूल गया, जो शांतिपुर में ही पीछे उनके गंगा बहती थी, वहां एक बार वो गंगा स्नान के लिए गए, तो देखा गंगा के दूसरे तट पर नारायणपुर एक गांव है, वहां पर नरसिंह गुदड़ा का ऐसे उनके ब्राह्मण थे, उनकी दो पुत्रियां थी श्री और सीता। तो उन्होंने जब उनके दर्शन किए अद्वैत आचार्य के, तो उन्होंने मन में तुरंत उनको पति के रूप में स्वीकार कर लिया और वापस जाके अपने पिता को ये बात कही। और ये जो पुत्रियां भी थी साधारण पुत्रियां नहीं थी, जब इनका जन्म हुआ श्री का, ये बिल्कुल अलौकिक कन्या थी। उस समय इनके पिता स्नान करने आए थे गंगा में, तो कमल पुष्प के अंदर इनको एक अलग कन्या प्राप्त हुई, और इतनी सुंदर कन्या थी, देखा हाथ हिल रहे हैं, उनको वापस घर में ले आए। और जिस प्रकार से सीता माता पृथ्वी के अंदर से प्राप्त हुई थी जनक महाराज को, और जिस प्रकार राधा रानी का भी प्राकट्य कुछ इस प्रकार हुआ था, तो उन्होंने उसको पुत्री के रूप में स्वीकार किया, और इसलिए उनका नाम रखा गया सीता देवी। और जब ये 4 साल की थी, तो एक सन्यासी उनके गांव में आया, और सन्यासी ने आके उन पुत्रियों को प्रणाम किया, तो सारे गांव वाले हैरान कि एक तुम सन्यासी होकर कन्याओं को ऐसे प्रणाम क्यों कर रहे हो, कह रहे ये साधारण कन्या नहीं है, एक मुक्ति देवी है और एक भक्ति देवी है। तो आगे जाके ये इनके इनके जीवन में भी अलग अलग लीलाएं हैं कि बिल्कुल साधारण असाधारण पुत्रियां थी, तो इनसे इनका विवाह हुआ था। और ये भी बताया गया है ये पूर्णमासी के, सीता माता पूर्णमासी के अवतार है इस लीला के अंदर। और ऐसे उनके जीवन में हम देखते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में अनेक अनेक लीलाएं आती हैं। एक बार सच्ची माता के मन में इस प्रकार का आक्रोश रहता था अद्वैत आचार्य के प्रति कि इनकी वजह से जो मेरा पुत्र है विश्वरूप, इनकी कथाओं को सुन के संन्यास ले लिया है। उन्होंने कहा, उनके मन में ऐसा भाव था, इनका नाम तो है अद्वैत, अद्वैत मतलब एक, परंतु ये मेरा जो एक परिवार है इसके विभाजन करी जा रहे हैं, इसलिए इनका नाम होना चाहिए द्वैत। तो इस प्रकार का भाव सच्ची माता के मन में था, जो उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया था, परंतु महाप्रभु अंतर्यामी हैं, सबके रूप में हृदय में स्थित हैं, तो उन्हें इस बात का ज्ञान था। तो कई वर्ष बाद में जब उन्होंने महाप्रकाश लीला की 7 प्रहर तक 21 घंटे तक वो बिल्कुल अपने भगवान विष्णु के उसको रूप में प्रकट हुए, सिंहासन पर बैठे हुए, सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरा कर रहे थे। अलग अलग भक्त जाके कहते तुम्हारी क्या इच्छा है, कोई कहता था मेरे पुत्र भक्ति में आ जाए, कोई कहता था मेरे भक्ति में ये बात आए इसको आप दूर कर दीजिए। तो जब ऐसा लीला चल रहा था, तो एक भक्त ने देखा कि यहाँ पर सारे भक्त हैं परंतु सच्ची माता नहीं है। तो उन्होंने महाप्रभु को कहा कि क्यों ना हम सच्ची माता को बुला के ले आए, आप उन पर भी कृपा कीजिए। तो महाप्रभु ने कहा नहीं। तो नहीं, सारे भक्त लोग हैरान हो गए, वो तो आपकी माता है। उनका माता है परंतु उन्होंने अपराध किया है अद्वैत अद्वैत आचार्य के प्रति, उसे लगता है कि विश्व रूप के घर छोड़ने का कारण अद्वैत आचार्य है, और इसलिए उनके प्रति उनका जो इल फीलिंग्स है, उनके जो अंदर से भाव है दूसरे प्रकार का है। तो एक भक्त ने जाकर सच्ची माता को ये बता दिया, और सच्ची माता ने जब ये सुना उनको पहले तो बड़ी हैरानी हुई कि कैसे इसको पता है कि मेरे मन में ऐसा भाव है, परंतु वो तुरंत भाग के वहां पर गई जहां ये लीला हो रही थी और अद्वैत आचार्य से मिली, और अद्वैत आचार्य को जानते ही उन्होंने बिल्कुल क्षमा मांगी कि मेरे मन में आपके प्रति ऐसा भाव था, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और अद्वैत आचार्य के इष्ट देव है गौरांग महाप्रभु, और उनकी माता उनसे इस प्रकार से क्षमा मांग रही है, ये देखकर वो बड़े एम्बेरस हो गए और वो सच्ची माता का गुणगान करना प्रारंभ किया कि सच्ची माता कैसे पूरे विश्व की माता है, जिनके गर्भ में परम पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए हैं, और उनका गुणगान करते करते वो इतने भाव विभोर हो गए कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। और सच्ची माता को बस इसी अवसर का इंतजार था, जैसे ही वो बेहोश होकर गिरे सच्ची माता ने तुरंत उनको प्रणाम किया, क्योंकि पहले वो कभी उनको प्रणाम नहीं करने देते थे, प्रणाम किया, उनके चरणों की धूल ली और अपने माथे पर लगाई, जिससे उनका अपराध महाप्रभु ने क्षमा कर दिया। और फिर बाद में सच्ची माता को भी उन्होंने इस प्रकार से प्रेम प्रदान किया। हालांकि ये सब नित्य परिकर है, भगवान अपने नित्य पार्षदों को इस्तेमाल करते हैं कुछ ना कुछ सिद्धांत, कुछ ना कुछ शिक्षा स्थापित करने के लिए, जैसे उदय मुरली कृष्ण को भी बता रहे थे। तो इस लीला से वो ये दिखाना चाहते हैं कि चाहे कोई भगवान का कितना अंतरंग पार्षद ही क्यों ना हो, सच्ची माता ही क्यों ना हो, फिर भी वैष्णव अपराध भक्तिमय जीवन के लिए कितना खतरनाक है, और कितना सावधान होना चाहिए किसी भी साधक को इस वैष्णव अपराध से अपने आप को सुरक्षा करने के लिए। इससे पहले भी जो अद्वैत आचार्य मायावाद का प्रचार कर रहे थे, महाप्रभु उनके उनके पास गए थे शांतिपुर में, तो आगे पूरा प्रसंग आता है कैसे महाप्रभु बैठे हुए हैं घर के बाहर और वो कह रहे हैं कि मैंने जब कृष्ण के रूप में कंस का सिंहार किया, और अलग अलग रूप बता रहे हैं कि मैंने राम के रूप में कैसे रावण को मारा, और मैं ये प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वैष्णव निंदा करता है उसको मैं खुद बालों से पकड़ के रौरव नर्क में ढकेलूंगा। और बताते हैं अगर कोई भी, वहां पर महाप्रभु कहते हैं, कोई भी भक्त जो वैष्णव निंदा से बचता है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है उसे मैं निश्चित रूप से भगवत प्रेम प्रदान करूंगा। और इससे पहले भी अद्वैत आचार्य भगवान गौरांग महाप्रभु जो अद्वैत आचार्य कहते हैं कि वर मांगो, तो अद्वैत आचार्य भगवान से यही वर मांगते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आप प्रकट हुए हैं सभी जीवों को आप अपना कृष्ण प्रेम मुफ्त में वितरित कीजिए बिना किसी भेदभाव के, परंतु ऐसे जीवों को कृष्ण प्रेम मत दीजिए जो वैष्णवों की निंदा करते हैं या फिर बहुत ही अभिमानी और या गर्वित हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर आप सभी को कृष्ण प्रेम दीजिए। और इसके बाद देखते हैं जब महाप्रभु एक बार शांतिपुर आए तो श्रीला माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव दिवस था, और अद्वैत आचार्य ने वहां पर बहुत ही बड़ा भव्य सम्मेलन आयोजित किया था, और इतना भव्य अरेंजमेंट देख के महाप्रभु ने उनका गुणगान किया कि तुम ऐसा लगता है कि तुम तो सदा तुम स्वयं शंकर हो, क्योंकि शंकर जी के अलावा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट कोई नहीं कर सकता। और हम देखते हैं, और फिर महाप्रभु ने ये उनको वर दिया कि इस उत्सव में जो भी भाग लेगा, जो भी प्रसाद ग्रहण करेगा, उसको परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेमा भक्ति प्रदान होगी। और हम देखते हैं आज भी इतने सालों बाद ये जो दायित्व है इसको अद्वैत आचार्य जी की कृपा से इस्कॉन को प्राप्त हुआ है, और प्रतिवर्ष अब मायापुर में जाएंगे, हर वर्ष शांतिपुर जो उत्सव होता है 40 से 50 हजार भक्तों का वहां पर प्रसाद बना के वितरित किया जाता है, जो भी वो प्रसाद भी कम पड़ जाता है, और किसी को मालूम नहीं कहां से इतने सारे लोग उस उत्सव में भाग लेने के लिए आते हैं, दूर दूर से लोग। बताते हैं कि देवता गण भी मनुष्य रूप लेकर उस उत्सव में शायद भाग लेने आते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ भिखारी या ऐसे लोग बस भर रहे, दूर दूर से बहुत अच्छे अच्छे परिवार से, कि इस दिन जिसने इस उत्सव में भाग लिया उसको कृष्ण प्रेम मिलना निश्चित है, ऐसा गौरांग महाप्रभु का वरदान है। इसका देखते हैं, एक बार जब वो श्राद्ध बना रहे थे तो उस समय बहुत ही ये कड़ा व्यवहार रहता था, अगर किसी निकृष्ट वर्ग के व्यक्ति ने, ये जो मलेच्छा है किसी ने यवन परिवार से है, अपना हल्का सा पानी भी छिड़क दिया, उसको ड्रॉप भी टच हो गए, तो तो हिंदू समाज उसका बहिष्कार कर देता था और वो फिर कोई पूजा नहीं कर सकता, आजीवन वो हिंदू समाज में नहीं आ सकता और बिल्कुल उसको बहिष्कार किया जाता, इतने कड़े नियम थे। फिर भी जब श्राद्ध जब उन्होंने मनाए अद्वैत आचार्य जी ने, तो उसमें उन्होंने किनको भोजन के लिए आमंत्रित किया? नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर को। और हरिदास ठाकुर बहुत कंसर्न थे कि मेरी वजह से ये जो अद्वैत आचार्य हैं बिल्कुल मुश्किल में ना आ जाए, और वो बहुत ही विनम्रता से कह रहे थे कि मैं इसका योग्य नहीं हूं, आपको ब्राह्मणों को इनवाइट करना चाहिए। और अद्वैत आचार्य उनको कहते हैं, तुम्ही खाइला होय कोटि धामन भोजन, एता वाली श्राद पात्रा करायला भोजन, कि तुम्हें भोजन कराना करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है, 10 मिलियन ब्राह्मण, इसलिए इस श्राद पात्र को स्वीकार करें। आचार्य कहे तुम ही नहीं करिया भाई, सही आचार्य बाये शास्त्र मत होय। मेरे प्रिय हरिदास कृपया मत घबराओ, मैं शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार उसका कड़ाई से उसका पालन कर रहा हूं। और इसके तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बहुत ही निर्देशात्मक लिखते हैं, अद्वैत आचार्य को पूर्ण विश्वास था शास्त्रिक में जो शास्त्र में जो निर्देश दिए हुए हैं, और उन्होंने जो समाज में लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह नहीं की, डिड नॉट केयर अबाउट सोशल कस्टम। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक कल्चरल मूवमेंट है विच डू नॉट केयर अबाउट लोकल सोशल कन्वेंशन, जो समाज में आम धारणाएं हैं उनकी परवाह नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य के पद का अनुसरण करते हुए कोई भी भाग विश्व के किसी भी भाग से क्यों ना हो उसको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जैसे ही वो वैष्णव व्यवहार के अनुसार अपनी योग्यता प्रकट कर रहा है। तो अद्वैत आचार्य के जीवन से हम देख सकते हैं वो हमेशा इस प्रकार से कार्य करते थे कि कैसे जो चैतन्य महाप्रभु का असली ग्लोरी है उसको वो प्रकट कर चुके, प्रकट कर सके। उनकी जितनी भी लीलाएं देखेंगे उनका यही भाव रहता था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का गुणगान हो और कैसे उनका उनकी जो महानता है उसको प्रकट की जा सके। उनका जो परिवार है उनके 6 पुत्र थे, 3 मायावादी थे और 3 शुद्ध भक्त थे, उसमें से उनका एक पुत्र का नाम था अच्युत्यानंद। तो एक बार एक सन्यासी उनके घर पर आए और उस सन्यासी ने अद्वैत आचार्य से पूछा कि महाप्रभु और केशव भारती में उन क्या संबंध है। तो महाप्रभु ने कहा कि जो केशव भारती है महाप्रभु के गुरु हैं। और अच्युत्यानंद ने जैसे ही सुना, वो 5 वर्ष के बालक थे और वो इतने क्रोधित हुए कि आप अपने आप को गुरु कहते हैं, आप इस प्रकार से प्रचार करते हैं, महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है उनका कोई गुरु हो सकता है क्या? तो आप कैसे कह सकते हैं केशव भारती उनके गुरु हैं? और वो अद्वैत आचार्य को डांटने लगे। तो जब अद्वैत आचार्य ने ये सुना इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने तुरंत वो बिल्कुल नंगे थे और 5 वर्ष के, बिल्कुल उठाया और भाव विभोर होकर कीर्तन करने लगे। और सन्यासी तुरंत बार बार दोनों को प्रणाम कर रहे थे कि कितने महान ये हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो एक आदर्श ये जितने भी महाप्रभु के पार्षद हैं अधिकतर गृहस्थ आश्रम में है और अपने आचरण से वो प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो हम भी क्यों ना अपने जो बच्चे हैं उनको इस प्रकार से प्रशिक्षित करें कि वे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बन सके, इस प्रकार से बने कि चैतन्य महाप्रभु की जो महानता है उसको वो आगे उसका प्रचार कर सके। और बाद में कोई मैं गौरांग महाप्रभु भी अच्युत्यानंद प्रभु को उठाते हैं और उनके साथ नृत्य करते हैं और कहते हैं अद्वैत आचार्य मेरे भी गुरु हैं और हम दोनों भाई भाई हैं। तो महाप्रभु को भी अच्युत्यानंद को बहुत प्रेम करते थे। और ऐसे निश्चित रूप से बहुत सारी लीलाएं हैं, परंतु समय हो गया है, इसे एक आखिरी लीला के साथ मैं समापन करना चाहूंगा कि कैसे अद्वैत आचार्य महाप्रभु के प्राकट्य का कारण भी बने और महाप्रभु के अप्रकट होने का कारण भी बने। श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में थे अक्सर सच्ची माता के लिए जगन्नाथ वस्त्र प्रसाद तुलसी दल भेजते थे, क्योंकि संन्यास लेने के बाद जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें भ्रमित करके कहा जाए थे शांतिपुर, और फिर अद्वैत आचार्य सच्ची माता को बुला के लाए थे कि आखिरी बार मिलने के लिए। तो सच्ची माता ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि पुरी में ही वो अपना हेडक्वार्टर बना ले। तो वो पुरी से अक्सर अपने सेवकों को भेजते थे सच्ची माता के लिए जगन्नाथ प्रसाद, जगन्नाथ वस्त्र, निर्माल्य लेकर। तो जगन्नाथ जगदानंद पंडित को भी उन्होंने भेजा सच्ची माता के लिए। तो सच्ची माता से मिलने के बाद वो आए शांतिपुर और अद्वैताचार्य ने पूछा कि आप कैसे हैं महाप्रभु, वो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि गौरांग महाप्रभु तो प्रेम में बिल्कुल उन्मुक्त है, अपने आप को राधा रानी समझकर किस प्रकार से प्रेम के जो सबसे उन्नत लक्षण है उनको प्रकट कर रहे हैं और कैसे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय उनके समक्ष बैठकर गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी द्वारा और ऐसे अन्य अलग अलग जो शास्त्र है उनसे उद्धृत करते हैं। तो जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि मेरा एक पत्र है, ये महाप्रभु को दे देना। और पत्र में उन्होंने क्या लिखा, बोला के कही हा लोका है ला बोला, बोला के कही हा हाटे ना भी काए चौला, बोला के कही हा काए ना ही का औला, बोला के कही हा इहा कही आछे बोला। तो महाप्रभु को ये पत्र उन्होंने लिख कर दिया। बोल मतलब कौन, पागल को कहते हैं। तो बोला का कही हा कि चैतन्य महाप्रभु को ये बताओ जो एक पागल की तरह प्रेम में पागल है। लोका हाइला बोला, लोक जो लोग हैं, हाइला हाइला हो चुके हैं, बोला वो भी पागल हो चुके हैं। बोला का कही है उन्हीं पागल को दोबारा बताओ, हाटे ना विकाए चौला, हाटे मतलब बाजार में, ना विकाए चौला, चौला चावल, कि चैतन्य महाप्रभु जो पागल है उनको बताओ कि हर कोई उनकी तरह पागल हो चुका है और बाजार में चावल की अब और मांग नहीं है। बौला का कहिया काय नाही का औला, दोबारा उस पागल व्यक्ति को बताओ नाही का औला, बौला का कहिया इहा कहिया बौला, कि फर्दर टेल हिम दोज नाउ मैड इन शेड लव आर नो लॉन्गर इंटरेस्ट। दोबारा बताओ जो लोग पागल हो गए हैं उनका इस भौतिक जगत में कोई रुचि नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु को बताओ जो पागल हो गए गए हैं कि एक पागल ने उन्हें ये पत्र भेजा है। तो जब जगदानंद पंडित ने ये पत्र देखा सुना, वो तो पूरे रास्ते बहुत ही हंसते हंसते जा रहे थे कि ये क्या लिखा है, बौला का कहिया लोका हैला बौला और इस तरह से लिखा। और जगन्नाथपुरी पहुंच के भी जिसने भी पत्र पढ़ा वो भी जोर जोर से हंस रहा था, परंतु जब स्वरूप दामोदर ने पत्र पढ़ा तो बहुत गंभीर हो गए, क्योंकि वो समझ गए कि इन्होंने अद्वैत आचार्य ने क्या लिखा है। और जब महाप्रभु ने ये पत्र पढ़ा तो उन्होंने कहा कि अद्वैत आचार्य के मन को कौन जान सकता है, कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक विग्रह को बनाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है, उसकी आराधना करता है और बाद में उसी विग्रह को फिर विसर्जन कर देता है। तो इस पत्र को पढ़ के महाप्रभु जितने भावावेश में थे तो बताते हैं उनके अंदर का जो भाव है वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो गया। वो कृष्ण प्रेम में जो राधा रानी का जो वो आस्वादन करने आए थे, जो राधा रानी को जो प्रेम आस्वादन होता है, तुरंत उनके जो इमोशंस है इतने ज्यादा इंटेंसीफाई हो गए। और कुछ इसके इस पत्र को प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद वो अप्रकट भी हुए। और देखते हैं कि कैसे ये महाप्रभु जब प्रकट हुए, नित्यानंद प्रभु भी बांका राय जो विग्रह है एक चक्र धाम में उसके अंदर प्रवेश हुए। तो जब अद्वैत आचार्य ने भी अपना मन बना लिया था कि कैसे वो भी अब अप्रकट होंगे, तो उन्होंने एक बहुत ही विशाल संकीर्तन का आयोजन किया जिसमें लाखों लाखों लोग संकीर्तन में आए। और वो संकीर्तन इतना जब पीक पे पहुंच गया, सारे अपने भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई लेट रहा है, कोई हंस रहा है, कोई भाग रहा है, कोई दहाड़े मार रहा है, कोई हुंकार कर रहा है, तो उसके बीच में अद्वैत आचार्य अप्रकट होकर वापस अपने नित्य स्थान में गए। तो बाद में लोगों को पता चला, उस समय कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। तो ऐसे उनकी अनेक अनेक लीलाएं हैं, आज के दिन हम उनके जीवन से अनेक शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे नरोत्तम दास ठाकुर हम भजन गा रहे थे, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाएं तब कृपा बले पाए चैतन्य निराय। अगर हम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अद्वैत आचार्य की कृपा के बिना संभव नहीं है। और जैसे जो हम यहाँ पर बोलते हैं निताई गौर प्रेमानंद है, तो इस हाँ जगन्नाथ पुरी बंगाल में क्या बोलते हैं, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। श्री अद्वैत आचार्य अविभाजित महामहोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।